उससे एक कदम और आगे बढ़कर के मैं अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करूंगा। भवानी प्रसाद मिश्र से पूछा जाता था तो वो कहते थे, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सुबह तू उस जगह से बढ़ के सो। इसके पहले कि हम सुबह जागें, हम ये देखें कि कहां से हमने अपनी यात्रा छोड़ दी थी, कल हम कितनी दूर तक आ पाए थे। और इसी तरह जब हम सोने लगें तो हम देखें सुबह हमने कहां से यात्रा शुरू की थी और हम कितने चले हैं या वहीं खड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम और पीछे हट गए। यदि हम इतना भी अपने जीवन में और ध्यान रख सकें तो ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते। हमारे पास विचार है जीवन को अच्छा बनाने का। वो विचार जब हमारा धीरे धीरे आचरण में परिवर्तित होता है तब फिर हमारे जीवन में वो विचार लाभ देने लगता है। विचार की शक्ति छोटी नहीं समझना चाहिए। हमारे अंदर यदि विचार आ गया है और हम यदि संकल्पित हो जाते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, तो वो विचार भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। क्या हुआ था एक बार, एकनाथ के जीवन की यह घटना है। महाराष्ट्र में उनको बहुत संत के रूप में माना जाता है। वो बचपन में एक बार मां के कहने से किसी औषधि के निमित्त से पेड़ की छाल लेने गए थे। तो जब वो पेड़ की छाल लेने गए तो कुल्हाड़ी हाथ में लिए जब उस पेड़ के पास पहुंचे और उस पेड़ की छाल निकालने लगे तो मन में यह विचार आया कि इसको दुख तो होगा, मैं इस पर कुल्हाड़ी चलाऊं और इसकी छाल निकालूं ऊपर से तो इससे कैसा दुख होगा, मैं कैसे पता करूं कि इससे दुख होगा। एक विचार आया मन में, हम सबके मन में भी इस तरह का विचार आता है, लेकिन हम उसके बाद क्या करते हैं, होगा अब थोड़ा बहुत होगा दुख है तो, कहा तो है कि एक इंद्री जीव होता है वृक्ष में भी, लेकिन अब ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, जीवन तो ऐसे ही चलेगा, सांस तो लेनी पड़ेगी, पानी तो पीना पड़ेगा, भोजन तो करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। ऐसा विचार करके हम, और वो जो विचार आया था कि दुख कैसा होगा किसी और को, उस विचार को हम बुला देते हैं, उस विचार को हम दबा देते हैं, और हमारे भीतर जो अपने सुख सुविधा के लिए जरूरी है उस चीज को कर बैठते हैं। पूरे 24 घंटे अगर अपन देखें तो अपने भीतर से एक आवाज तो आती है, कह रही ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसके बाद ऐसे कैसे काम चलेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, ऐसा विचार भी उसके साथ आ जाता है, और हम दूसरे वाले विचार को महत्व देने लगते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज को उतना महत्व नहीं देते। तो उन्होंने क्या किया कि देखना तो चाहिए, छाल तो निकाल ली अपन ने पेड़ की, लेकिन कैसा दुख होता होगा, ये तो ऐसी ही है जैसे मेरे शरीर पर खाल लगी हुई है, ऐसे ही तो वृक्ष पर उसकी छाल लगी हुई है, मैं जरा निकाल के देखूं अपने पैर की खाल कैसा लगता है, और बस ज्यादा सोच विचार की बात नहीं थी, अनुभव करना है, और उसी कुल्हाड़ी से धीरे धीरे अपने पैर की छाल को खाल को निकालने की कोशिश की तो खून निकलने लगा, थोड़ी सी खाल तो निकली, दर्द भी बहुत हुआ, समझ में आ गया कि बहुत दर्द होता है। लौटे तो आकर के मां को छाल तो दी, पर मां तो हाथ में छाल लेकर के और घबरा गई कि क्यों कहां गिर पड़े, किसी ने कुछ मार दिया, पेड़ पर चढ़े थे क्या, ये सारी धोती तुम्हारी तो खून में लथपथ हो गई, हुआ क्या। तो क्या जवाब दिया कि मां अब हमसे पेड़ की छाल लेने के लिए मत भेजना ना कहना, मां पेड़ को बहुत दुख होता है, तो तुम्हें ये चोट कहां से लग गई, चोट नहीं लगी मां, जब मैंने सोचा कि पेड़ को दुख होता होगा तो कैसा होता होगा इसका अनुभव करने के लिए मैंने अपने पेट अपने पैर की खाल इसी कुल्हाड़ी से छील कर देखी है, तो मां बहुत दुख होता है, अब मैं पेड़ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, जो व्यवहार मेरे साथ कोई करे मुझे वो अच्छा ना लगे तो वह व्यवहार मैं दूसरे के साथ कैसे करूं। यह जो विचार है ये विचार कौन सा है, आचार्य भगवंतों के द्वारा कहा गया अहिंसा का विचार है। अगर ये विचार हमारे भीतर अनुभूति बन जावे तो हमारे जीवन में बहुत आसानी से आचार्यों की वाणी अपने आप लाभ देने लगी। ऐसे ही यशपाल ने एक उदाहरण लिखा अपने जीवन का कि जब वो गंगोत्री पहुंचे अमरकंटक में ये देखने के लिए कि गंगा वहां कहां से निकली है, तो वहां खड़े होकर के उनके मन में विचार आया कि अरे इस गंगा की पवित्र धारा में यदि कोई विष डाल दे तो इससे जितनी भी धाराएं निकलती हैं वे सब विषाक्त हो जाएंगे, और अगर कोई इसमें अमृत डाल दे तो जितनी धाराएं इसमें से निकली हैं वे सब अमृतमय हो जाएंगी। ठीक ऐसे ही हमारे विचार हैं, विचार में अगर हम विष डाल दें, विचार में यदि हम हिंसा घोल दें तो हमारे जितने कर्म होंगे वे सब हिंसा से प्रेरित होकर के होंगे, और यदि हम विचारों की धारा में और अहिंसा का अमृत डाल दें, प्रेम और करुणा और दया इन सब चीजों को अपने विचारों में समाविष्ट कर दें, तो तो जो भी हमारे कर्म होंगे, क्योंकि विचार से प्रेरित होकर ही कर्म होते हैं, जितनी कर्म की धाराएं निकलती हैं वे सब हमारे विचारों और हमारे परिणामों, हमारे भावों पर निर्भर करती हैं। हमने कल ये बात समझी थी कि हमारे अपने परिणाम, हमारे अपने जो भाव हैं वो राग द्वेष से युक्त हैं। 24 घंटे हम राग द्वेष करते रहते हैं। आचार्य भगवंतों ने उसी राग द्वेष के अभाव का नाम अहिंसा कहा है। बड़े से बड़ी अगर अहिंसा की परिभाषा हो सकती है, बड़े से बड़ा आचरण का स्टेप हो सकता है, कदम हो सकता है, तो वो अहिंसा ही है। सारे व्रत उसी एक अहिंसा व्रत के परिपालन के लिए हैं। सत सत्य बोलते हैं, वह भी दूसरे की क्षति ना हो ऐसा सत्य बोलना, वहां पर भी अहिंसा ही है। दूसरे के धन को छीनते हैं, हड़पते हैं, चोरी करते हैं, उसे चोट पहुंचती है, उसे पीड़ा पहुंचती है, वह भी छोड़ देना, उसका उद्देश्य भी अहिंसा है। दूसरे के प्रति अपने परिणामों को विकारी बनाते हैं, वहां भी हिंसा है। और यह कि हम संग्रह वृत्ति अपनाते हैं, आवश्यकता से ज्यादा चीजें जोड़ के रखते हैं, तो इसका मतलब है दूसरे का शोषण कर रहे हैं, वहां पर भी हिंसा है। अगर देखा जाए तो सत्य का, चोरी का, ब्रह्मचर्य का और अपरिग्रह का पालन करना, यह भी उसी एक अहिंसा के लिए है। तो अहिंसा का विचार हमारे पास है, लेकिन हमारे जीवन में अहिंसा नहीं है। विचार तो हमारे पास है। हम जब तक राग द्वेष करते रहेंगे तब तक हम पूरी तरह अहिंसक तो नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करें? फिर आचार्य भगवंतों के चरणों में जाकर के बैठें और उनसे पूछें कि भगवान, मैं राग द्वेष से तो बच ही नहीं पाता हूं, मैं क्या करूं फिर उस अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बनता है, मैं अपने राग द्वेष को घटाने के लिए करूं क्या? तो कल अपन ने ये बात भी थोड़ी सी समझी थी कि राग द्वेष के निमित्तों से बचें, और इतना ही नहीं, संकल्पित हो जावे हम कि हम कम से कम राग द्वेष के निमित्त मिलाएंगे। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें अब थोड़ा और अपने संकल्प को बनाना बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें ये संकल्प लेना पड़ेगा कि कम से कम बिना वजह इरादा करके दूसरे को मारने का विचार तो नहीं करूंगा, न दूसरे को मारने की वाणी बोलूंगा, न दूसरे को मारने के लिए कोई कार्य करूंगा। इंटेंशनली इरादा करके, जिसको हम संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा बोलते हैं, हम कम से कम जान बूझ करके, इरादा करके और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का विचार ना करें। ये बहुत सूक्ष्म विचार है। हम लोग अपने जीवन में अहिंसा का पालन करते हैं कुछ हद तक, लेकिन समाज में और देश में इसमें भी अहिंसा के बारे में हमें विचार करना चाहिए, और परिवार में भी। आप आश्चर्य करेंगे कि हम अपने परिणाम बिल्कुल खराब नहीं करते हैं, लेकिन हम दूसरे के परिणामों के खराब करने में यदि निमित्त बन जाते हैं तब वह भी हिंसा ही है। हमारे परिणाम दूसरे के लिए खराब करने के बने हैं। हम कहते जरूर हैं कि हमने कहां अपने परिणाम खराब किए हैं, लेकिन दूसरे के परिणाम खराब करने का यदि विचार किया है तो वह भी तो हमारा विचार अपने आप की क्षति के साथ साथ दूसरे की भी क्षति कर रहा है। ऐसा थोड़ा सा विचार अपने मन में हमें अहिंसा के बारे में बहुत सूक्ष्मता से करना चाहिए। पर शावक के जीवन में तो इतना संभव नहीं है। वो तो इतना ही कर ले कि मैं इरादा करके किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, तकलीफ पहुंचाने का भाव नहीं करूंगा, और जो भी कार्य करूंगा घर गृहस्थी के, उनमें भी सावधानी रख करके करूंगा, अपने आत्मरक्षा के लिए भी मेरे से थोड़ी बहुत हिंसा हो जाएगी, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं वैसा करूं। और उद्योगों के बारे में और आरंभ के बारे में आज हमें फिर से विचार करना पड़ेगा। आत्मरक्षा के लिए की जाने वाली हिंसा से तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज आरंभ और उद्योग के नाम पर जिस तरह से हम हिंसा कर रहे हैं उस पर हमें विचार करना चाहिए। वो हिंसा आचार्यों ने श्रावक के लिए क्षम्य जरूर कही है कि आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा क्षम्य है, लेकिन आज हमें इनका इसलिए विचार करना जरूरी है क्योंकि घर गृहस्थी में इस तरह के साधन हमने जुटा लिए हैं कि जिनसे हिंसा की मात्रा बढ़ गई है। आटा पीसना है, पानी भर के रखना है, और भी बहुत सारे काम है, अग्नि जलानी है, इन सब चीजों में इतना मॉडर्नाइज हो गया है। आधुनिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस आधुनिकता के चलते हमारी अहिंसा की बुनियाद हिल जावे तो वो आधुनिकता कोई काम की भी नहीं है। और आज ये हुआ है, हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अपने जो हम घर गृहस्थी के काम करते हैं जिनमें हमसे निरंतर शारीरिक रूप से भी हिंसा होती है, वचनों से भी होती है, और परिणामों से तो सवाल ही नहीं है, वो तो निरंतर होती रहती। जितनी ज्यादा हमारी आसक्ति आज खाने पीने और इन सब चीजों में बढ़ती चली जा रही है, क्या उसके चलते हम आरंभी हिंसा ज्यादा नहीं करने लगे हैं? मोटा पहनते थे, मोटा खा लेते थे, आज तो बारीक पहनना और बारीक खाने की आदत है। बारीक खाना मतलब टेस्टी होना चाहिए, उसमें कितनी हिंसा हुई इससे मुझे कोई मतलब नहीं। किस तरह हिंसा से निर्मित होकर के चीजें हमारे घरों में आ रही हैं हम उसका जरा भी विचार नहीं कर रहे हैं। अहिंसा का विचार तुम्हारे पास है, मैं इसलिए आज इस चीज को विशेष रूप से कहना चाहूंगा। मन तो था कि पांचों पापों पर बात हो चुकी, राग द्वेष जिसका घट गया तो उसके तो पांचों पाप घट ही गए, इसमें तो कोई बात ही नहीं। फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा एक एक पर थोड़ी सी चर्चा तो कर लेनी चाहिए। इतने अकेले से काम नहीं चलेगा कि राग द्वेष को हम कम करें, नहीं, राग द्वेष किन निमित्तों से होते हैं और किस तरह हम कर रहे हैं आज घर गृहस्थी में। इतनी सारी चीजें डिब्बा बंद पैक हमारे घर में आ जाती हैं और हम सोचते हैं कि हमने कहां कुछ हिंसा की है, हमने तो बनाया तक नहीं है, बनाने में तो बहुत हिंसा होती है, हम तो बना बनाया लेके आए रेडीमेड, उसमें तो हमने कोई हिंसा ही नहीं करी। नहीं भैया, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे चौके में क्या चीज आ रही है, क्या खाना है। तो खाना तो भक्ष्य पदार्थ है, लेकिन आ कौन सी चीज रही है भक्ष के नाम पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभक्ष आ रही हो? हमारे अपने चौकी में सड़ी गली चीजें आ रही हो तो वे सब अभक्ष ही है। मर्यादा से बाहर की चीजें आ रही हो तो वे सब अभक्ष ही है। हमारे चौकी में अगर हमारे परिवार जन रात में बैठ के खा रहे हो तो वो चौका चौका नहीं रह गया, हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा। हां, बहुत इन बातों को नहीं कहना चाहिए दुख पहुंचता व्यक्ति को कि अब संभव ही नहीं है रात में ना खाएं, ऐसा संभव ही नहीं महाराज, आप कितने भी कहो, लेकिन कहना आवश्यक है। अगर धीरे धीरे इसी तरह और ये चीज शामिल हो जाएगी तो एक समय शाख हुआ करती थी कि जैनी आदमी है रात में नहीं खाएगा, जैनी आदमी है पानी छान के पिएगा, ये हमारी प्रामाणिकता थी। आज हमारे हाथ से ये प्रामाणिकता खत्म होगी। रात में अगर कोई हमसे पूछे कि क्यों भाई खाओगे, हाँ चलेगा, जैन होने की वजह से वो पूछता है हमसे कि क्या भाई खाओगे क्या, तो हम कहते चलेगा। आज हमें मालूम है कि जो बाजार में कस्टर्ड आता है वो बिना एग के नहीं बनता है, लेकिन हमारे घरों में चौके में कस्टर्ड किसके घर में नहीं आता? कोई हाथ उठाएगा कि हमारे घर में नहीं आता? एक हाथ कोई होगा जो हाथ उठा देगा कि मेरे घर में कस्टर्ड नहीं आता? बाकी 90% मैं कह रहा हूं मेजॉरिटी की बात, क्या मेजॉरिटी के साथ यह है कि उनके यहां पर कस्टर्ड आता होगा। और कस्टर्ड के मायने हैं ए पेस्ट ऑफ एग इन द मिल्क, अंडे को जो दूध में फैट करके बनाया जाए और ऊपर लिखा रहता कॉर्न फ्लैक, मक्के का आटा। अगर मक्के का आटा ही कस्टर्ड है तो फिर मक्के का आटा घर में पीस के रख लो, एक चम्मच कस्टर्ड की जगह डाल लिया करें। 100% लिखा उसमें कि 100% प्योर शाकाहार, अब आने लगा है उसमें डिब्बे में लिख करके आने लगा। और कई लोग इसकी वकालत भी कर रहे हैं कि हमने देख लिया है कस्टर्ड बिल्कुल ठीक बनता है, लेकिन कस्टर्ड की परिभाषा क्या है? जरा विचार करें, उनकी डिक्शनरी में देखें जहां से ये बना है फॉरेन की डिक्शनरी में देख लें कि कस्टर्ड के मायने क्या होते हैं, क्या विदाउट एग कोई कस्टर्ड संभव है? अगर है तो फिर उसको हम घर में क्यों नहीं बना पाते हैं, ठीक वैसा ही क्यों नहीं बनता है? आज हमारे घर में बंगाली स्वीट्स के नाम पर और बहुत सारी खाद्य सामग्री आ रही, हम बाजार से लाते हैं, इन पर हमें विचार कर लेना चाहिए, बहुत विवेकपूर्वक विचार करना चाहिए। अहिंसा के बारे में यदि हमारे पास कोई विचार है तो हम करेंगे चर्चा आगे कि भगवान महावीर स्वामी की संवेदनशीलता कैसी थी और हमारी संवेदनशीलता को क्या हो गया। वास्तव में तो हमारे भीतर अगर संवेदनशीलता होगी तो ये सारी चीजें फिर हमारे अपने आप बंद हो जाएंगी, हमारे घरों में आना बंद हो जाएंगे। अभी मैं चमड़े की बात नहीं कर रहा हूं, कितना चमड़ा भीतर घुस गया है घर के, कितना रेशम हमारे घर के भीतर घुस गया है, कितना और कॉस्मेटिक्स घुस गया है जो कि हिंसा से निर्मित होता है। ये सारी चीजें तो हैं ही, अभी तो मैं उनको टच ही नहीं कर रहा हूं। पहनने ओढ़ने और सुंदर बनने के लिए तो उन चीजों को टच ही नहीं करना, उनमें हिंसा अहिंसा का विचार ही नहीं करूंगा। तो सिर्फ खाने की सामग्री में भी हिंसा अहिंसा का थोड़ा सा विचार करें, जो कि हम अहिंसक कहलाने वाले लोग हैं उसमें हम थोड़ा सा हिंसा अहिंसा का विचार तो कर लें। कस्टर्ड है, मैं आपसे बंगाली स्वीट्स की बात कर रहा था कि पाउडर आता है और उससे हम उसको, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं कि जब हम अपने घर में ही और नींबू से दूध फाड़ करके और बंगाली स्वीट्स बनाते हैं वो चीज करते हैं, लेकिन जो हम ग्रेनाइट बाजार से खरीद के लाते हैं, जो पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आता है, या जो बाजार की बंगाली स्वीट्स हैं, उन सब में क्या पड़ा हुआ? रेनेट। रेनेट क्या होता? चार पांच महीने के अजन्मे हुए शिशु बछड़े के आमाशय में से निकलने वाला रेनेट है। 84 में गवर्नमेंट से बैन कर दिया गया था, फॉरेन से इसका एक्सपोर्ट होता था, वहां बैन किया था। VWC जो बहुत बड़ी इंटरनेशनल एक संस्था है, जो जानवरों के ऊपर होने वाली क्रूरता का निषेध करने वाली संस्था है, उसने, लेकिन फिर इसके बाद फिर तेजी से 84 में हुआ, कुछ दिन तक चला, फिर आना शुरू हो गया है। लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में आता है, बहुत आसानी से दूध उससे फट जाता है और छेना बनता। अपने घर में बनाते हैं वैसा रसगुल्ला नहीं बनता जैसा कि बाजार में बनता। बात क्या है? बात यह है, और बिल्कुल प्योर मांसाहार है वो, कहीं कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, जरा भी गुंजाइश नहीं है। चाय के बारे में बहुत सीधा सीधा सा है, लिख के आने लगा है 100% वेस्ट। आप जानते हैं कि अंडे को ये लोग शाकाहार मानते हैं, जिन चीजों में अंडा मिला रहता है उनको भी शाकाहारी मानते हैं, इसलिए में अंडा और जिलेटिन ना हो। जिलेटिन हड्डी से बनता है, कभी देखना हो तो जबलपुर से 15 किलोमीटर चले जाएं शेखपुरा बिटौनी की तरफ, सॉबलिश फैक्ट्री है, 80 टन वहां पर रोज हड्डियां गल करके और 20 प्रकार का पाउडर बनता है, जिसमें से 6 प्रकार के पाउडर हमारे खाने पीने की चीजों में डाले जाते हैं, जिसमें फूड जेली के नाम से भी बाजार में आता है और वो उपयोग में आता है। हमारे जितने टूथपेस्ट हैं उनमें कैल्शियम बाईफॉस्फेट के नाम पर यही चीज मिलाई जाती है, एक आध दो टूथपेस्ट छोड़ दीजिएगा। खाने पीने की चीजों में जिनको हम मुंह में डाल रहे हैं उनके बारे में विचार कर रहा हूं, जिनको हम लगा रहे हैं शरीर पर, जिनको हम ओढ़ रहे हैं पहन रहे हैं, उनके बारे में बिल्कुल विचार नहीं कर रहे हैं। अभी अपन विचार करिएगा थोड़ा सा, अगर हमारे पास अहिंसा का विचार है तो हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। हमारे पास एक विचार भी बहुत अच्छा है कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, लेकिन अपने सुख सुविधा के लिए कितनी तकलीफ, जो कि दिखाई नहीं पड़ने वाली तकलीफ है, जो हमने डायरेक्ट नहीं दी है लेकिन इनडायरेक्ट हुई है और वो हमारे अंदर पहुंच रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बिस्किट्स हैं, कौन यूज नहीं कर रहा है आज? जितनी भी बेकरी केक और बिस्किट्स वो आ रहे हैं उनमें क्या पड़ा हुआ है? एग्स के बिना आज 1% बिस्किट्स छोड़ दीजिएगा जिनमें एग नहीं है, 99% बड़े बड़े कंपनियां जो पाइलो ब्रिटेनिया है उन सब में एग डाला ही जाता है। इन छोटी छोटी चीजों पर हम बिल्कुल विचार बंद कर चुके हैं, हम आराम से जो है और अपने चाय के साथ में और बिस्किट्स खा रहे हैं, किसके घर में नहीं चल रहा होगा? हम कहते हैं हम अहिंसक हैं, हम और कहां कुछ, और पूजा पाठ इतनी बढ़िया से करेंगे, अभी अगर मैं एक ठो विधान विस्तार लूं तो सब मुकुट लगाए दिखेंगे यहां, एक नहीं बचेगा।
हमारे सामने पुनहरे वहां उसने क्या मुकुट लगा करके अब भी खड़े हो जाएंगे और हिल हिल करके और बढ़िया से वो संगीतकार आएगा सो संगीतकार के साथ उसकी टोन मिला करके और फिल्मी स्टाइल में और नाच गान और बढ़िया मजा और घर से बाहर निकले और फिर बिस्किट से और फिर चाय है। हिंसा बिल्कुल लगातार चलती रहे और अहिंसा के पुजारी बन करके भगवान के सामने और हम अपना दिखावा करते रहे, इसमें ही धर्म सीमित होकर रह गया। हमें विचार करना चाहिए इस चीज का। मैं इसलिए इस चीज को आज विशेष रूप से कहने के लिए मेरा मन बन गया कि ऐसे तो हम अच्छे अच्छे विचार हमारे पास हैं, हम आपको देते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, लेकिन उन अच्छे विचारों का हमने किस तरह से अपने जीवन में उनकी दुर्गति बनाई है यह भी हमें विचार करना चाहिए। हम नहीं समझ, हो सकता है हमारी अज्ञानता की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में शामिल हो गई हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता दूर होने पर, ज्ञान होने पर उन चीजों को छोड़ पाते हैं अगर, तो ही हम अधिकारी हैं अपने आप को इन सब चीजों के योग बनाने के। लिखा हुआ है कि जो मद मधु मांस इन तीनों का जब तक त्याग नहीं करता तब तक वो देशना के योग भी नहीं है। जो सत्य व्यसन का त्यागी नहीं है उसको क्या अधिकार है कि वो अभिषेक और पूजा की प्रक्रिया में शामिल हो, बताइए आप। लेकिन हमारे यहां पर सप्त व्यसन और मद मधु मांस डायरेक्ट नहीं हो, लेकिन कहीं कहीं तो डायरेक्ट भी हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तो हम आसानी से उनको चला रहे हैं और कोई कुछ नहीं कह रहा, ये तो चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तुम अपना धर्म करते रहो और ये बाकी चीजें तो सब चलती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर जो है आज हम क्या पी रहे हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक कहलाता है, कोल्ड ड्रिंक के नाम पर हम क्या पी रहे हैं, बताइए आप। कोल्ड ड्रिंक में क्या है आपको, पेप्सी की पूरी कंपनी जो डिक्लेयर कर चुकी है कि हम वीप जिलेटिन मिलाते हैं, हम गोमांस मिलाते हैं उसमें, इसके बावजूद भी कौन है जो व्यक्ति और पेप्सी नहीं पी रहा है कोल्ड ड्रिंक्स के, बच्चों को हम आइसक्रीम खिला रहे हैं बच्चों को जिसमें कि जिलेटिन पड़ी हुई है, लेकिन हम सचेत नहीं है, बताइए आप। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हम आपसे कह रहे हैं, ये बावजूदी है कि हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम इन सब चीजों को शुद्ध रूप से जुटा सकें, ये मैं मानता हूं, लेकिन इस दिशा में क्यों नहीं हम प्रयास करते हैं कि ये सारी चीजें हमें चाहिए हैं लेकिन ये सब शुद्ध रूप में मिले, इनमें हमें हिंसा ना हो करनी पड़े, इनमें हमें मद मांस मांस का दोष ना लगे। और अगर हम इन बातों को कहते हैं तो फिर और लोग जो है दूसरे ढंग की बातें कहना शुरू कर देंगे। मैं भी कह सकता हूं जैसे कि अरे अब साहब आयुर्वेद की दवाइयों में देखिएगा, अरे साहब एलोपैथ की दवाइयों में देखिएगा, उसमें तो अल्कोहल पड़ा ही हुआ और उसमें तो वो भी तो शराब ही है। भैया तबीयत ठीक करने के लिए पीना अलग है और तबीयत अच्छी है तीस को बिगाड़ने के लिए पी वो अलग बात है। तबीयत बिगड़ने पर हमने जो है उपयोग किया है अलग बात है, जिससे तबीयत ही बिगड़ जाती, तबीयत क्या पूरा जीवन ही नष्ट हो रहा है। तो ऐसी चीजों के बारे में भी हमें बहुत विचार करना चाहिए। मैंने तो जरा सा आपको टच किया है और बाकी चीजों के बारे में मुझे विशेष नहीं कहना। एक बात जरूर मैं उस दिन शायद कहना भूल गया था, आज फिर से कहूंगा कि हमें हमारी अपनी शाख की पानी छान के पिएंगे और भोजन रात में नहीं करेंगे, ये फिर से वापस लानी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, इंदौर के अंदर की दो घटनाएं मैं आपको सुनाना चाहूंगा, दो घटनाएं एक साथ जो एक लेटेस्ट है और एक पुरानी है। दोनों घटनाएं जब हुकमचंद जी साहब हुआ करते थे इंदौर के अंदर, सेठ हुकमचंद, तब उनके जमाने में कोई जैनी आदमी कोर्ट में गवाही नहीं देता था। और एक बार ऐसा हुआ कि कोर्ट में गवाही के लिए जैनी आदमी पहुंचा था और जज ने पूरा फैसला चेंज कर दिया था इस बात से कि जैनी आदमी है झूठ नहीं बोलेगा। इतनी बड़ी शाख हुआ करती थी उस समय। और दूसरी शाख क्या हुआ करती थी, जैनी है रात में नहीं खाएंगे। अभी जो मेरे ख्याल से ये 93-94 के लगभग या 95 में कोई एक बहुत बड़ा बोहरा समाज का फंक्शन हुआ था जिसमें कि उन्होंने सामूहिक रूप से 2,00,000 लोगों को और मांसाहार देने के लिए प्रावधान रखा था और सामूहिक रूप से मांसाहार होना था। सारा कुछ तैयारियां हो गई थी और आना शुरू हो गया था। 8 दिन बाद डेट भी डिक्लेयर थी कि इस दिन और फलाने स्कूल में, और सब लोग जैसे अपने यहां पंगतें होती हैं ठीक उसी तरह से उनकी भी पंगत होती होगी। और उसमें कितना मांस, कितने कितने टन की सीमा थी उसमें कि ये सब बनाया जाए। तब जैन समाज के 5 लोग, प्रमुख लोग और शाहबुद्दीन जो उनके मुख्य थे बोहरा समाज के, उनके पास निवेदन करने गए थे मंच पर कि कृपा करके आप अपने घरों में खाते हैं, हमने कभी इसमें कुछ नहीं कहा, लेकिन कृपा करके आप समूह में इस तरह ना खाएं, इससे तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। उन्होंने पांचों लोगों को देख करके और बहुत प्रसन्नता से यह कहा कि चूंकि जैन लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हमें इन पर विश्वास है और ये आए हैं, कोई और आता तो शायद हम इतना विचार नहीं करते, लेकिन ये आए हैं इसलिए हम इस पूरे मंच से डिक्लेयर करते हैं कि हम अपना वो 8 दिन बाद होने वाला प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। कोई भी समूह में हम मांसाहार इत्यादि नहीं करेंगे, इंडिविजुअल जो करते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इन 5 लोगों से आज मैं भी गुजारिश करूंगा, मैं भी निवेदन करूंगा कि क्या इसी मंच से ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि जैनी लोग रात में समूह में भोजन नहीं करेंगे। तब 5ों के सिर नीचे हो गए थे, हम अपने लिए ले सकते हैं लेकिन जैन समाज का हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तब उस समय शर्म से चेहरा नीचे करके और वापस लौटना पड़ा था। उनने तो बिल्कुल समूह में खाना नहीं खाया, मांसाहार नहीं किया था, लेकिन हम अपने किसी भी मंच से हम अपने समाज का कोई नियम नहीं बना पाते हैं कि हम रात में समूह में नहीं खाएंगे। अपने घर में हम खाते होंगे, वो हमारी अपनी इंडिविजुअल वो है, लेकिन सामाजिक कोई अहिंसा होती है कि नहीं होती, कोई राष्ट्रीय चरित्र होता है कि नहीं होता, कि व्यक्तिगत चरित्र भी होता है, हमारा व्यक्तिगत चरित्र भी है, व्रत नियम संयम जो भी हम करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, वो हमारा व्यक्तिगत चरित्र है, लेकिन हम समूह का चरित्र का भी पालन करें कि भाई समूह में जो चीजें वर्ज्य हैं उनको नहीं करें। कई लोग ऐसी दलील देते हैं कि ये तो फ्रॉड है, ये तो मायाचारी है, बिल्कुल मायाचारी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये हमारी अपनी शाख है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप समूह में नहीं खाएं और रात में दिन घर में खा लें, मैं ये सलाह थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बाय द वे यदि हमें घर में और लेना पड़ता है, हमारी अपनी मजबूरी है तो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन समूह में तो नहीं लूंगा मैं, समूह में और वो भी बुफे सिस्टम से जिसका कि कोई धर्म ही नहीं है। ये आज बहुत तेजी से चल पड़ा है बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, तो फिर मिडिल क्लास के लोग भी इसको फॉलो करने लगे। ये हमें बड़े लोगों से शुरू, नेताओं से शुरू करना पड़ेगा जो समाज का नेतृत्व करते हैं, मुझे वहां से शुरू करना पड़ेगा। ये विचार हम लोगों को अब बैठ करके शांति से, बहुत शांति से ये करना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए अब हमारे अपने विवाहों में और हमारे अपने जीवन में। सामूहिक रूप से यदि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका हमें निर्धारण करना पड़ेगा। ये बात जुदी है कि समूह के ऊपर अब कोई ग्रिप नहीं रही है, अब नेतृत्व ही इस तरह से करने लगेगा तो बाकी लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर 10 लोग इस तरह के लिए तैयार हो जाए, मैं तो यंग्स से कहूंगा, यंग्स के अंदर ये ताकत है कि वे चाहें तो इसको कर सकते हैं। हम जाएंगे किसी के यहां भी बुफे सिस्टम में और रात में और ये कह के खड़े हो जाएंगे कि हम जैनी हैं, हम रात में समूह में नहीं खाते हैं, हम इसका निषेध करते हैं, और 25 लोग उठ के बाहर आ जाएं, देखें क्या होता है, कैसे बंद नहीं होता। हम विवाह में जाएं और वहां पर पता कर लें कि ये कितने रुपए दे करके और लेकर के विवाह किया गया, हम चले आए वहां से 25 लोग वॉकआउट करके कि हम इस विवाह में शामिल नहीं होंगे क्योंकि इसमें धन पैसा मांगा गया है, स्वेच्छा से दिया नहीं गया है, इसमें मांगा गया है। हम देखें कैसे नहीं होती ये चीजें बंद, ये हिंसा के काम है, दहेज कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं है, बहुत टॉर्चर करके ली जाने वाली प्रक्रिया है, इसको आप अहिंसा में शामिल मत करिएगा। डॉवरी के मायने क्या होता था इंग्लिश डिक्शनरी में उठा के देखिएगा कि अपनी बेटी को उसकी घर गृहस्थी के योग्य सामान दे करके विदा करना, बस इतना ही होता था। अपने घर गृहस्थी, एक घर गृहस्थी के लायक जितनी चीज आवश्यक है वो देके और अपनी बेटी सहित, डॉवरी दहेज वो कहलाता था, लेकिन इसमें भी हिंसा शामिल हो गई। उसके जो विवाह की प्रक्रिया है, जो कि कहना चाहिए एक धार्मिक अनुष्ठान था विवाह, अब वो सामाजिक अनुष्ठान भी नहीं रह गया, अब वो सिर्फ एक फैशन परेड हो गई जिसमें कि हम तमाम अपने व्रत नियम संयम जितने भी हैं, चाहे वो परिग्रह परिमाण का हो और चाहे वो भोगोपभोग के परिमाण का हो, उन सब की सीमाओं का उल्लंघन कर चुके और अहिंसा के व्रत की भी हम जितनी ज्यादा दुर्दशा विवाह में करते हैं, खान पान और इन सब चीजों से लेकर के, जो लोग दिन में विवाह करते हैं वे भी ठाट से 10 बजे रात से बनना शुरू होता है, मैंने तो देखा और 4 बजे सुबह तक पूरा, क्योंकि आइटम्स बनता है, बनना है। उनके यहां पर 25 आइटम बने थे तो हमारे यहां पर 26 तो बननी चाहिए, एक ज्यादा बनना चाहिए। और उतने आइटम बनाने के लिए मुझे रात पूरी रात निकल जाए तो निकल जाए, दिन में खिलाऊंगा लेकिन सारी रात बनेगा भोजन, बात तो एक ही हुई। इन चीजों पर हम बिल्कुल विचार नहीं कर रहे हैं, ये हमारे चरित्र को कभी भी अच्छा बनाने वाली चीजें नहीं है, भले ही हमारे पास कितने बढ़िया विचार क्यों ना। जैन दर्शन के पास ऊंचे से ऊंचा विचार है राग देश योर हिंसा, राग देश करना ही हिंसा है, लेकिन हमारी अपनी आसक्ति इतनी बढ़ गई, हमारा विषयानुराग इतना बढ़ गया है कि उसके चलते अब अहिंसा सिर्फ विचारों में सीमित रह गई, जीवन में नहीं आ पा रही है। कभी कभी किसी कवि की कल्पना अगर पढ़िएगा भगवान महावीर स्वामी के जीवन की संवेदनशीलता के बारे में तो आप आश्चर्य करेंगे। हमारे भीतर की संवेदनशीलता मर जाने से ये सारी चीजें होना शुरू हो गई। अब हमें चींटी पर पैर रखने में तो थोड़ा सा दुख मालूम पड़ता है, लेकिन दूसरे के गर्दन पर जरा भी हमें तकलीफ नहीं होती। कौन मर रहा है मेरी सुख सुविधाओं के लिए, मरे तो मरे, किस किस के प्राण जा रहे हैं, जाते हो तो जाए, मेरी अपनी सुख सुविधा के लिए मुझे सब चाहिए। इतना भी हमारे भीतर संवेदनशीलता नहीं रही है। भैया सुख सुविधाओं के साधन कौन नहीं जुटाता है, सब जुटाते हैं। भोजन किसको आवश्यक नहीं है, पानी किसको आवश्यक नहीं है, घर गृहस्थी के काम करना, मैं कहां कह रहा हूं कि आप उन सबको छोड़ दीजिएगा, लेकिन उन सब में विवेक तो होना चाहिए कि मुझे क्या करना है जिससे कि मैं मिनिमाइज कर सकूं हिंसा को। मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस इज द नॉन वायलेंस। अगर इतना भी हम परिभाषा बना लेंगे कि अहिंसा के मायने हैं कि हिंसा को मिनिमाइज करूं, मैं कम से कम अपने जीवन में मुझे हिंसा का आलंबन लेना पड़े, दो चीजों से काम चलता है तो मैं चार चीजें काय को करूं, क्योंकि जितना करूंगा उतनी। वैसे तो लिखा हुआ है कि कोई आज शिकार नहीं करता, कौन करता है शिकार, इतनी ताकत कहां है किसी के भीतर, लेकिन शिकार करने के ढंग क्या है आप आश्चर्य करेंगे। पढ़िएगा विचार कि शिकार करने का ढंग क्या है, भोजन की सामग्री आधी अधूरी प्लेट में छोड़ करके प्लेट को ऐसे डाल देना, ये आपने शिकार शुरू कर दिया है। छोटे छोटे जीव आकर उसमें पैदा हों और मरें, आप शिकार कर रहे हैं। आपने चाय का प्याला पी करके और थोड़ी सी चाय उसमें छोड़ करके प्याला घंटे भर को रख दिया है, आप शिकार कर रहे हैं। वो गरेलिया जो है दाना बिछा करके और जाल डाल करके पक्षी फंसाता था, आप क्या कर रहे हैं उसमें और आप में ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन इन छोटी छोटी सी बातों को हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारे घर गृहस्थी में इस तरह की हिंसा खूब धड़ल्ले से हो रही, आराम से हम कर रहे हैं और फिर बजा करके मंदिर में फर्स्ट क्लास, स्वाध्याय करने वाला स्वाध्याय कर रहा है, पूजा करने वाला ठाट बाट से पूजा कर रहा है, आहार देने वाला बड़े मजे से आहार दे रहा है, सब कर रहा है, लेकिन बाकी सब भी चल रहा है। मजा ये है, ये जो एक दोहरा मापदंड हम लोगों का बन गया है, ये दोहरे गणित जीवन के हैं, वो बहुत खतरनाक है। हमें इस पर खूब अच्छे से विचार करना चाहिए। आज का विचार यही है कि जैसे बन सके भैया अपने भीतर की संवेदनशीलता को थोड़ा सा बढ़ाएं। अपने प्रति तो हम संवेदनशील हैं, अपने सुख सुविधा के प्रति तो हम संवेदनशील हैं, लेकिन दूसरे की क्षति ना हो, दूसरे को पीड़ा ना पहुंचे और मेरे जीवन का काम भी चलता रहे, इस बारे में भी तो विचार करना चाहिए। छोटे छोटे से नियम हमें अवश्य अपने जीवन में शामिल करके अपनी इस अहिंसा को बढ़ा लेना चाहिए। अहिंसा के विचार को जीवन में घटित करने का एक ही उपाय है, जो चीज हमें आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, उसे ही उपयोग करूंगा। मेरा काम 10 सब्जियों से चलता है तो 11वीं सब्जी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितनी अधिक मैं आगे बढ़ूंगा उतना ही मुझे बहुत हिंसा। ऐसे मैं बहुत कम इस तरह की बातें कहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में आज इस तरह की बात आ गई, और हो सकता है मेरा बोलने का वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया हो, उस सब के लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहूंगा। मुझे नहीं कहना चाहिए बहुत सारी बातें, लेकिन क्या करूं, कई बार ऐसा लगता है कि यदि ये सब बातें धीरे धीरे फैलती चली गई तो हम इस तरह से क्या करेंगे, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं बताइए। वो मान के चलेंगे बस यही दोहरा गणित है इनका कि एक तरफ जो है पूजा पाठ करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, और दूसरी तरफ सारी हिंसा करते रहो, क्या यही दोहरा हम मापदंड उनको भी देंगे क्या, आने वाले बच्चों को भी हम यही शिक्षा देंगे क्या कि तुम तो अपने जीवन में अपने चरित्र में चाहे जितनी हिंसा करना हो उतनी कर लो, बस थोड़ा सा धर्म भी करते रहा करे, बस इतने ही से पर्याप्त काम चल जाएगा। नहीं भैया, हमारी अपनी शाख है वो बना के रखनी चाहिए। संवेदनशीलता के बारे में भगवान महावीर स्वामी की कल्पना की है किसी ने, दो उदाहरण मेरे सामने हमेशा आ जाते हैं ऐसी संवेदनशीलता के कि हाँ सचमुच महापुरुष ऐसी संवेदनशीलता वाले होते होंगे, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते होंगे, अपने सुख सुविधा के साधन तो जुटाते होंगे लेकिन उसमें भी मेरे द्वारा हिंसा ना हो जाए, हिंसा का विचार तक ना उठे मन के भीतर। विनोबा ने लिखा, हम किसी को मारने नहीं दौड़ते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को बचाने भी नहीं दौड़ते हैं ये भी तो अच्छा नहीं है। अहिंसा सिर्फ किसी को मारने और तक ही सीमित नहीं है, अहिंसा तो बचाने के लिए भी। मैं आज दिन भर में अपने जीवन के लिए मैंने कितनी हिंसा की है और कहां कहां मेरे से हिंसा हो सकती थी मैं वहां रुक गया हूं, मैंने वहां अहिंसा का पालन किया। मेरे से जो बच सकता था मैंने उसे बचाया है, लेकिन मेरे अपने जीवन के लिए जो मर गया है मैं उसके लिए दुखी हूं अवश्य कि हां मेरे अपने जीवन चलाने के लिए बहुत सारी चीजें मुझे करना पड़ी, लेकिन मैंने अतिरिक्त नहीं की। मैंने जहां कोशिश की है वहां मैंने बचाने की भी कोशिश की है। मैंने पानी तो पिया है अपने जीवन के लिए, लेकिन हर 48 मिनट में पानी छान के पिया है, मेरे भाव बचाने के हैं। मैंने छन्ना भावनाओं का लगाया है, मैंने सामग्री जो भी अपने जीवन यापन के लिए उपयोग में ली है मैंने विचार कर लिया है कि सामग्री में बहुत बहुत कम से कम हिंसा हो, मैं वही सामग्री अपने जीवन यापन के लिए चाहे पहनने ओढ़ने और खाने पीने की सामग्री, क्या इतना नहीं कर सकते? कर सकते हैं भैया, सबको उपयोग करना है चीजों का, लेकिन जरा सा विचार करके उपयोग करें तो बहुत सारी अनावश्यक हिंसा से हम बच सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी के जीवन की दो घटनाएं हैं, कभी ने कल्पना की है घटनाएं घटी के नहीं घटी हैं, इससे अपन को उतनी पुरानी बात अपन कहां जान सकते, पर हाँ लगता है कि महावीर भगवान ऐसे ही संवेदनशील रहे होंगे जिनके शासन में हम बैठे हुए हैं। ये अहिंसा इतनी ही संवेदनशीलता और उतना ही प्राणी मात्र से प्रेम सिखाती होगी जितना कि भगवान के मन में था। कहते हैं कि त्रिशला माँ के साथ और वे बचपन में और एक उद्यान में माँ जा रही थी तो उनके पीछे पीछे जा रहे थे और माँ तो उद्यान में चली गई, बहुत घास बिछी हुई थी उद्यान में सुंदर कालीन की तरह, और कहते हैं कि बालक वर्धमान वहीं बाहर गेट पर खड़े रह गए। माँ ने देखा कि वर्धमान तो आए ही नहीं, पीछे मुड़के देखा तो वो तो वहीं खड़े हुए, गई वापस लेने के लिए, क्या हुआ वर्धमान चलो ना भीतर, और देखा तो वर्धमान की आंखें भीग गई, तुम रो क्यों रहे, किसने क्या कह दिया? मैं अभी कहती हूं राजा से जाकर के कि वर्धमान को किसी ने कुछ क्या कहा, कड़ी बात कह दी क्या? नहीं मां, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम रो क्यों रहे? मां जब तुम इस कोमल कोमल दुख पर पैर रख के चलती हो तो मुझे बहुत दुख लगता है, देखो ना मां मेरी पूरी पीठ छिल गई है, तुमने जितने पैर उस घास पर रखे हैं मुझे लगा है कि जैसे मेरी पीठ पर वो सारे पैर रखे गए। और कवि ने कल्पना की है कि जब मां ने उनके वस्त्र हटा करके पीठ देखी तो जगह जगह पैरों के निशान बने हुए थे, इतनी संवेदनशील थे। हमारे मन में अगर इस तरह का विचार आने लगे, हमारे मन में इस तरह की भावना आने लगे तभी हम रुक पाएंगे। वैसे मैं जानता हूं कि अकेले कहने से कोई नहीं रुकने वाला जब तक नहीं चाहिए, और हम सबके मन में भी अगर वही संवेदनशीलता आ जाएगी तो कोई नियम नहीं बनाना पड़ेंगे, फिर ना किसी को कहना पड़ेगा कि हमने ऐसा संकल्प करा है हमने ऐसी सौगंध ली है, ना कोई महाराज को कहना पड़ेगा कि रात्रि भोजन मत किया करे भैया तुम काय को करते हो, नहीं भी हो जाएगा अगर हमारे भीतर ये विचार और अनुभूति बदल जाए। और एक और उदाहरण भगवान महावीर स्वामी बन गई कि माँ एक दिन श्रृंगार करती थी, बहने श्रृंगार करती हैं क्यों नहीं कर, वर्धमान अचानक पहुंच गए और माँ सिर में जो है और बहुत बढ़िया फूलों को का गुच्छा लगा रही थी, तो माना कि वर्धमान तू ऐसे क्यों देख रहा है, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूं, कितना सुंदर लग रहा है मेरे जूड़ों में लगा हुआ फूलों का गुच्छा, बिल्कुल सुंदर नहीं दिख रही, फूल तो जूड़ों में सुंदर नहीं लगते, फूल तो अपनी डाली पर ही सुंदर लगते हैं, उस डाली से तोड़ दो तो वे मर जाते हैं मां, तो मरे हुए फूलों से श्रृंगार करके मुझे बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही। ये विचार कौन कौन दे सकता है, ये विचार ऐसे विचार दिए हैं भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में घटित करके दिए हमारे लिए, और इतना हमारे जीवन में आज सब समाप्त होता चला जा रहा धीरे धीरे। भैया थोड़ा सा विचार तो करना चाहिए, जितना बन से बने उठाए तो उस अहिंसा के विचार को जीवन में अप्लाई भी करें, व्यवहारिक जीवन नहीं तो अकेले अच्छे विचार हम अपने पास रखे रहें और हमारा आचरण अच्छा ना हो और दोहरा जीवन हम जिए, एक तरफ हम अहिंसा की जय जयकार करें और दूसरी तरफ जीवन में हिंसा हमारे निरंतर चलती चली जाए, तो क्या होगा? उससे हमारा जीवन थोड़ी पवित्र होगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। हम सब कोशिश में हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाएं। मैंने फिर से एक बार कहूँ कि यदि कोई बात ऐसी आपको थोड़ी सी लग गई हो तो उसको मत करिएगा। प्यारी शाख थी वो तो धीरे धीरे मिटती चली जा रही। हम लोग सिर्फ उत्सव प्रिय हो गए, हम लोग सिर्फ ताम झाम और पूजा पाठ इनमें ही, कि हम सबके जीवन से अहिंसा का संदेश मिलने लगे। हमारी वाणी से तो मिलता है। के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है जग।